समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की भी हलचल होगी और वहां की खबरें भी हम आपको देंगे और डेडलाइन में बात करेंगे हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर। बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती। आज के अंक में मैं हूं विनय सक्सेना और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून विनय। विनय, आवर कंट्री एपिटमाइजेज द ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। इफ यू रिमेम्बर, इन द अर्ली 1990s देयर वर ओनली एन एस्टिमेटेड 6 लैंडलाइन फोन्स फॉर एवरी 1000 इंडियंस एंड द वेटिंग टाइम फॉर अ न्यू फोन कनेक्शन वॉज मेजर्ड नॉट इन डेज और वीक्स बट इन मंथ्स।
अनुजा, फोन लगना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था अगर किसी घर में लैंडलाइन लग जाता था।
एब्सोल्युटली। बट टूडे स्मार्टफोन्स विच आर द प्राइमरी डिवाइसेज इंडियंस यूज टू एक्सेस द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया कैन बी परचेज्ड ओवर द काउंटर विद इन मिनट्स एंड देयर प्रेजेंस इज ubiquitous. This transformation is further enabled by the affordability of mobile data in India, which has some of the cheapest rates in the world.
इसके आने से लैंडलाइन खत्म ही हो गए हैं।
जी हाँ। And in recent years, India's political parties have increasingly turned to social media and the messaging app called WhatsApp in their campaigns, leading observers to categorize the 2019 and of course the upcoming 2024 parliamentary election being called the WhatsApp election.
अब कैंपेनिंग का माध्यम बन गया है ये, चाहे राजनीति की कैंपेनिंग हो या आपको अपनी एडवर्टाइजिंग करनी हो, जस्ट एक मैसेज का वो लीजिए और बस भेजते रहिए, आपकी एडवर्टाइजिंग होती रहेगी।
जी हाँ। एंड ऑफ कोर्स आकाशवाणी विल कीप यू अपडेटेड विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पॉलिटिकल फील्ड एज द जनरल इलेक्शंस आर कमिंग नियरर। So keep listening to our programs regularly. But right now, let's begin with the news making headlines at this hour first. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses the election rally in Saharanpur, also holds public meetings in Ajmer. Congress holds a rally in Jaipur.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए।
NIA arrests 2 key conspirators in West Bengal's Bhupati Nagar blast case.
IPL क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा।
एंड विनय, इट्स नाउ टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट नेशनल और ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस।
खेल तो खैर आपस में सौहार्द बढ़ाता ही है और इसके माध्यम से बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है।
यस, द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस विच टेक्स प्लेस एनुअली ऑन द 6th ऑफ अप्रैल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉजिटिव रोल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी प्ले इन कम्युनिटीज एंड इन पीपल्स लाइव्स अक्रॉस द ग्लोब। स्पोर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट कम्पोनेंट ऑफ सोसाइटी एज इट कीप्स अस एक्टिव, कम्पिटिटिव एंड ऑल्सो ऑफकोर्स हेल्दी। Additionally, playing sports can increase confidence and teach valuable life lessons. The United Nations has long recognized sports power and universality, using it to unite individuals and groups by supporting sports for development, participating in events on a global and grassroots level, and developing its sports-related campaigns and initiatives.
खेल के माध्यम से तो ये रहता है कि आपको समझ में आ जाता है कि सबके साथ मिलके कैसे चलना है।
The adoption of this day signifies the increasing recognition by the UN of the positive influence that sport can have on the advancement of human rights and social and economic development.
6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विभिन्न समुदायों की सद्भाव और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव को चिन्हित करता है। खेल पूरे ग्रह में सामाजिक संबंधों, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में खेल बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और योगदान देते हैं। ऐसे में दुनियाभर में खेलों के प्रति जागरूकता लाने और उसके विकास के लिए हर साल 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस IDSDP मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन भी किया जाता है।
Yes, on August 23, 2013, the United Nations General Assembly voted resolution number 67/296, declaring 6th of April as the International Day of Sport for Development and Peace. And on 18th of September 2013, the resolution report was released. The International Olympic Committee contributed to the foundation of this special day.
अनुजा, इस दिन क्या है कि ना हम सब लोग मिलकर सोचते हैं कि भाई खेल को बढ़ाया जाए और इसके माध्यम से, क्योंकि खेल में क्या है कि आप सबके साथ मिलकर खेलते हो, फिजिकल एक्टिविटी, इम्यूनिटी बढ़ती है, सबसे बात यह है।
जी हाँ, बट स्पोर्ट इज अ लीवर फॉर इंटीग्रेशन और सोशल री इंटीग्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज और इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। फॉर यूथ स्पेशली विनय, स्पोर्ट्स कैन बी अ वे ऑफ इंस्टिलिंग रिस्पेक्ट फॉर ओपोनेंट्स एंड रूल्स, टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप, डिटर्मिनेशन।
हार और जीत में आपको कैसे बिहेव करना है, ये सबसे बड़ी बात है, डिसिप्लिन सिखाता है आपको।
दैट्स वॉट, फॉर एग्जाम्पल, ऑल दीज सॉकर, क्रिकेट, हॉकी मैचेज आर यूज बिटवीन टू साइड्स टू
हेल्प टीम गेम्स,
दे हेल्प रीबिल्ड द रिलेशनशिप्स, सो दे सर्टनली क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉट ओनली द सोशल लाइव्स ऑफ द एथलीट्स बट ऑल्सो ऑन द डेवलपमेंट इन द रीजन। So the global theme for 2024 is Sport for the Promotion of Peaceful and Inclusive Societies. This emphasizes the unique ability of sports to unite people, foster social change and contribute to sustainable development and lasting peace.
2015 में खेल को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया था क्योंकि इसे सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए माना जाता था। इसलिए यह दिन राष्ट्रों के लिए इस क्षेत्र के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रों को खेल और खेल के बुनियादी ढांचे के विकास, जनता के बीच जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुजा, हमारी सरकार अब इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है।
राइट, सो स्पोर्ट हैज दिस यूनिक एबिलिटी टू ट्रांसेंड बाउंड्रीज, यूनाइट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एंड ऑल्सो प्रमोट वैल्यूज सच एज टीम वर्क, रिस्पेक्ट एंड फेयर प्ले। बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ स्पोर्ट्स, the international community can work towards achieving the UN's objectives for sustainable development and lasting peace.
आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खेल संगठनों और खेल के विकास के लिए काम कर रहे संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाता है। देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई तरह के खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देना भी है।
ऑफ कोर्स, एट द एंड वी कैन ऑलवेज से दैट द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ स्पोर्ट्स। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट द एफर्ट्स ऑफ स्पोर्टिंग बॉडीज एंड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड who are using sports as a tool for good and to inspire further action towards building a more just, peaceful and inclusive world.
अनुजा, खेल संगठन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
Of course.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
And yes, we start with the state of Assam. Assam received the prestigious geographical indication, or also called the GI tag, recently for 19 items, including 6 iconic items from the Government of India's geographical indication registry. We have more on this from our correspondent from Assam.
19 traditional products and crafts from Assam have been granted the prestigious geographical indication GI tag, out of which 13 are credited to the Boro community. These products have a rich historical significance and provide direct support to many people. Assamese bihu dhol, japi, satebari metal craft, pani meteka or water hyacinth craft, missing handloom and Asirkandis terracotta works are the 6 iconic items received the GI tag. 13 of the products that have been awarded GI tags are associated with the Boro tribal community of the state. These products represent the cultural heritage of the Boros and include a variety of items such as Jotha, Gangona, Gamsa, Sifung, Serja, Khartwi, Kham, Gongar, Dunjia, Thorka, Keratapini, Jamgra, Dokna and Eri silk. These GI tags cover both agricultural products and musical instruments. A geographical indication is a label used on products that originate from a specific geographical region and have certain qualities or reputation due to that region. It serves as a trademark in the international market. अमीनुल हक सुद्दार, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
कालीघाट कला शैली पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर के आसपास विकसित हुई। कालीघाट मंदिर तीर्थयात्रियों की अपनी दैनिक धारा के साथ स्थानीय कलाकारों को सस्ती स्मृति चिन्ह बनाने और बेचने का एक आदर्श अवसर प्रदान करता है। जानते हैं हमारे संवाददाता से।
Composed of bold outlines, vibrant colors, and minimal background details, the paintings depicted mythological stories, figures of Hindu gods and goddesses, as well as scenes of everyday life from the 19th and early 20th century when the Kalighat School of Art reached its zenith. Despite some European influences like watercolor paints and the factory-produced paper, Kalighat art was rooted in the traditional Pattachitra paintings that were present even before the arrival of the British. The Kalighat artists, through their paintings, depicted the damage caused to the traditional Indian way of life under British administration. They also denounced the Indians who blindly admired and supported the colonial rule. Besides, the Kalighat artists also produced paintings of great freedom fighters, such as the Rani of Jhansi, to show their support for the Indian freedom struggle. The Kalighat paintings gained great popularity during the Swadeshi movement. Prominent artists such as Jamini Roy were greatly inspired by Kalighat paintings and viewed them as an authentic form of Indian art. The practice began to die out during the early part of the 20th century with the increasing availability of cheaper, commercially produced pictures. Many Potua families found themselves having no other option but to leave the city or to look for other forms of work. Kalighat painting survives today in the rural districts of West Bengal. Midnapur and Birbhum are two such places where the practice of Kalighat painting has been kept alive by contemporary artists. Sushmita Mondol from Akashvani, Kolkata.
And moving on, we take you all to the city of Chennai, where the State of Chennai, I'm sorry, where the Indian Institute of Madras has launched the Mobility and Intelligence Transportation Collaborative towards building a global and mobility digital infrastructure. This initiative is based on the principle of collaboration and competition, under which the institute will bring together industry competitors, government agencies, and academic innovators, and co-create the mobility digital infrastructure to enable holistic system solutions. We have more from our correspondent.
This is a global initiative to build mobility digital infrastructure and a research-based portfolio, besides developing a skilled workforce to develop breakthrough mobility solutions to realize the United Nations Sustainable Development Goals, such as sustainable transport in total transport emissions. It also focuses on accident prevention and energy efficiency of all transport from net zero modes. The changes in recent times, such as availability of digital data, very low computing costs, computing at scale, and the rapid evolution of artificial intelligence are some of the defining characteristics of what we can do differently. The fast rollout of 5G technology will provide the ground to develop the country as one of the fastest growing technologies in the world. The upcoming 6G technologies will integrate sensing, quantum computing, which will really open an amazing technological opportunity to the future generation in a sustainable manner. IIT Madras will anchor the initiative with its technological and human resources in numerous fields. The Bharat Multimodal Mobility Stack is a digital platform which defines mobility as a digital public good and serves as a benchmark for standardizing, developing and deploying mobility tools and services for everyone. It is designed to compare standards and infrastructure development, multimodal connectivity, advanced vehicle technologies and enhance user experience. Joy, Akashvani for Parikrama from Chennai.
And in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you capsule based on the state profiles giving details of the number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents from a different area. And today, the Dibrugarh Lok Sabha constituency is one of the 14 Lok Sabha constituencies of Assam, consisting of 10 assembly segments. Polls for the Dibrugarh constituency will be held on the 19th of April. Let's listen to our correspondent.
The Dibrugarh Lok Sabha constituency consists of 10 assembly segments and polls for this parliamentary constituency will be held on 19th April in the first phase. Three candidates are in the fray from this parliamentary constituency. Bharatiya Janata Party nominated the Union Minister for Port Shipping, Waterways and Ayush, Sarbananda Sonowal, dropping the sitting MP, Rameshwar Teli. Assam Gana Parishad and United People's Party Liberals are in alliance with the BJP in the state. Assam Jatiya Parishad Party Chief Lurindjoti Gogoi, a nominee of the United Opposition Front, Assam, led by Indian National Congress, is also contesting from this constituency. Manoj Thanowar is the Aam Aadmi Party candidate and hails from the T-Tribe community. The Dibrugarh parliamentary constituency has 16,50,706 total electorates, and of these, 8,06,935 are males and 8,43,771 are females and 33 transgender voters. Dibrugarh witnesses a two-way fight between the Bharatiya Janata Party and Assam Jatiya Parishad. Aminul Haq Juddar, Akashvani News, Guwahati.
And now we take you over to Lakshadweep. Lakshadweep, the country's smallest Lok Sabha constituency in terms of number of voters, will go to polls in the first phase on 19th of April. The Union Territory has one Lok Sabha constituency reserved for scheduled tribes. We have a report.
There are four candidates in fray for the general election in Lakshadweep constituency. The incumbent MP and NCP Sharad Pawar Party candidate Mohammad Faisal, former MP and International Congress candidate Hamdulillah Said, the BJP-supported NCP Ajit Pawar Party candidate T.P. Yusuf and independent candidate K. Koya are in competition for the single Lok Sabha seat in Lakshadweep. 55 booths are there across 10 islands. 57,784 voters are currently present in the electoral roll. In the last election in 2019, NCP candidate Mohammad Faisal won with a majority of just 823 votes. Many parties such as JDU, CPIM, CPI, who had contested in 2019, is not competing this time. Their votes and nearly 2,000 first-time voters will be crucial in the island's verdict. Mayusha for Akashvani News from Thiruvananthapuram.
And now it's time to take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right.
On 6th April 1930, Mahatma Gandhi, after walking for 241 miles, defied the salt's law by picking up a lump of salt at Dandi village in Gujarat.
Truth was once again on the march. Never was the wave of patriotism so powerful in the hearts of Indians as it was on this great occasion.
The spark of Dandi March ignited the flames of the freedom movement and caused the idea of mass civil disobedience to spread like wildfire across the nation.
Daily, Gandhi tramped about 10 miles. On the way, he spoke on his familiar themes, beseeching the people to abjure alcohol, abandon child marriage, and, when the signal came, to break the salt law.
Dandi March was initiated by Mahatma Gandhi from Sabarmati Ashram on the 13th of March 1930 along with 78 Satyagrahis. Daily, they walked and addressed public meetings. The ashram routine of prayer, spinning and writing up the daily diary was followed by every marcher.
After the day's march through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. In the evening, the prayer meeting was held in the village. Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. Next morning, the people of Aslali saw Gandhi stride away with his pilgrim band to the next stage in the journey to the sea.
The long march of 241 miles finally ended on the 5th of April 1930. Along the way, Gandhiji and his companions had broken journey for the night at 22 places.
Sarojini Naidu received Gandhi and his followers on the outskirts of the village. After relaxing for a few hours, he set out to prepare the people for the war against the salt tax that was to begin next morning.
On April the 6th, the atmosphere at Dandi was both tense and solemn. The day began with prayers and Gandhiji addressed the people.
Those who fear the government will leave. Only those who are prepared for jail going and for receiving bullets should accompany me tomorrow morning.
Gandhiji then nominated Sri Abbas Tayyibji and after him Sarojini Naidu to lead the Satyagraha if he was arrested. After prayers, Gandhiji with his followers took a bath in the sea. Then at 8:30 a.m. he defied the salt law by picking up a lump of salt. The entire nation rose against what Gandhiji described as Gunda Raj.
Millions broke the salt law and courted imprisonment. Salt depots were raided everywhere and the manufacture of salt was undertaken. In a single raid at Darsana, 289 volunteers were wounded. But even the brutality of the police failed to break the morale of the people. The police opened fire in Calcutta, Madras and Karachi and perpetrated acts of brutality all over the country. On May the 4th, Mahatma Gandhi was arrested at Karadi, 3 miles from Dandi, whilst asleep in his cottage.
We also remember martyr Babuji Donsegir, a resident of Khandesh, Maharashtra, who died on the 6th of April, 1858. Babuji was a soldier in the English East India Company Army in Khandesh, but left it during the First War of Indian Independence in 1857 and took part in fighting against the British on several occasions. He also offered financial assistance to his neighbours and encouraged them to join the independence movement. He was martyred on the 6th of April, 1859, in the course of an engagement in Khandesh. We salute the great son of the soil.
We also remember martyr Ghulam Nabi, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Initially a soldier in the British Indian Army at Ambala, Nabi joined the Indian freedom activists and fought against the British Army. However, he was captured by the British soldiers and charged with mutiny and desertion. He was executed on the 6th of April 1858 at Ambala.
और श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं खेल के मैदान की ओर और बताते हैं वहां की हलचल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्थ में खेला गया। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5-1 से हरा दिया। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक की तैयारी के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये श्रृंखला खेली जा रही है। ओलंपिक में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में होंगे।
And if we talk about the IPL matches going on in IPL today, Rajasthan Royals will take on Royal Challengers Bengaluru at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur this evening. The match will start at 7:30 p.m. While in yesterday's match, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 6 wickets in Hyderabad, chasing 166 for victory. Sunrisers Hyderabad reached their target with 6 wickets in hand and 11 balls to spare. And now, coming to the last segment of paying tributes to some great personalities who are associated with today's date, we start with the death anniversary of
Pratima Devi. Pratima Devi Kannada cinema ki ek prasiddh Bharatiya abhinetri thi. Unhone apne abhinay ke sapne ko pura karne ke liye ghar chhod diya. Acting ke prati unme itna junoon tha ki mehz 11 saal ki umr mein ise pura karne ke liye koshishein unhone shuru kar di thi. प्रतिमा देवी को कर्नाटक सरकार की ओर से 2000-2001 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
Right, and today we also pay tribute to Suchitra Sen on her birth anniversary. The Mahanayika of Bengali cinema, who was the first Indian to win the Best Actress Award in an international film festival. One of India's best-known movie actresses, who remains famous even today as a symbol of Bengali femininity, beauty and grace. She appeared in both Bengali and Hindi films and was in such demand at the height of her fame that the celebrated filmmaker Satyajit Ray scrapped his proposed film Devi Chaudhrani because she was not available. And her refusal to act in a film by the great Hindi showman Raj Kapoor made headlines. She became a recluse after retiring from movies in 1978 and was often compared to another famous recluse, Greta Garbo. But she continued to be talked about nonetheless. Even today, we talk about her, her films and her unique sense of style. Miss Suchitra Sen and Uttam Kumar were the most successful romantic pair in the history of Bengali cinema, famous for their passionate on-screen chemistry. They appeared together in more than 30 films, including the hits like Agni Pariksha and Shaptapadi.
এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি।
So this was a very hit Bangla movie along with Uttam Kumar. Suchitra Sen appeared in more than 50 Bengali films, but also in Bollywood Hindi films. She created with her first Bollywood film with Bimal Roy's Devdas in the year 1955, which was a major box office hit. We have a dialogue from this movie in her voice.
मेरे माता पिता मेरी मंगल कामना करते हैं, उन्होंने जो किया है मेरी भलाई के लिए किया है, तुम रास्ता छोड़ दो।
इतना अहंकार
क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तुम में रूप है कोई नहीं, मुझ में रूप है और कुछ भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो तो मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते हैं। तुम सोच रहे हो मेरी बदनामी करोगे, कर लो।
मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा, वो कैसे?
उस रात में तुम्हारे घर तक चली गई थी ना, यही बात चौकूट फैला दो, तुम्हारे मन को शांति हो जाएगी।
Dialogue was from her famous Hindi film Devdas, but of course the song was from another famous movie in Hindi, Andhi, in 1975. Suchitra Sen won many honors, including a silver award at the Moscow International Film Festival for her performance in a Bengali film, Sat Poke Bondha. She was given the Padma Shri in 1972. And, of course, she turned down the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema, because she did not want to go to Delhi and collect it in person from the President of India. The West Bengal government gave her the Bongo Bibhushan, its highest award, in absentia in 2012.
और श्रोता, अब बात करेंगे भारत के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी की, जिनका असली नाम अली सिकंदर था। जिगर मुरादाबादी उर्दू के मशहूर शायर और गजलों में एक प्रमुख हस्ताक्षर के नाम से जाने जाते हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब आतिश-ए-गुल के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
हमको मिटा सके ये जमाने ने दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
इसी के लिए जिगर मुरादाबादी जाने जाते थे।
Right, and Jigar Muradabadi used to write with his in his pen name of Ali Sikandar, and had been a regular on All India Radio since the mid-1930s. A self-taught poet with little formal education, he is considered one of the masters of the 20th century Urdu ghazal.
और अब बात करेंगे क्रिकेट में कर्नल के नाम से जाने जाने वाले दिलीप बलवंत वेंगसरकर की। दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट की दुनिया के एक बेहतरीन और महान खिलाड़ी रहे हैं। वर्ष 1983 का वो सुनहरा पल जब भारत ने विश्व कप जीता था, तब ये भारतीय क्रिकेट टीम का एक हिस्सा थे और विश्व कप जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले दिलीप वेंगसरकर एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट टीम में रहे। क्रिकेट की दुनिया में अच्छी बल्लेबाजी के लिए काफी मशहूर भी हुए। दिलीप वेंगसरकर ने उस समय जबरदस्त सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने 1975 में ईरानी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए 110 रन बनाए थे। इस पारी का जादू ऐसा चला कि वेंगसरकर को तुरंत भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। वेंगसरकर को 1981 में अर्जुन पुरस्कार, 1987 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीसीसीआई की तरफ से सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वेंगसरकर ने अपनी क्रिकेट अकादमी 1995 में खोली, जिसका नाम है ईआईएफ वेंगसरकर अकादमी।
एंड टुडे वी आल्सो विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू प्रणति नायक, एन इंडियन आर्टिस्टिक जिमनास्ट। शी इज द 2019 एशियन चैंपियनशिप वॉल्ट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। शी इज द थर्ड इंडियन जिमनास्ट टू विन एन इंटरनेशनल मेडल ऑन द वॉल्ट आफ्टर दीपा कर्माकर एंड अरुणा रेड्डी। She represented India at the 2020 Summer Olympics and is the second Indian female gymnast to qualify for the Olympic Games. She is also the 2019 Indian all-around champion and represented India at the 2014 Commonwealth Games and at the 2018 Commonwealth Games. She also competed at the World Championships in 2019, 2017 and 2014.
और श्रोता, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुझे विनय सक्सेना और मेरी साथी अनुजा को कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।